दशा देख कर अनंत काल से संसार में रक्त पच रहे हैं, पिताप के द्वारा दस्त हो रहे हैं और किसी को लोग कुछ मान रहे हैं। इसलिए सब लोगों ने जितने भी भगवत अवतार है, जितने भी हमारे आचार्य इसके किसी प्रकार से इनको संसार से निकालकर भगवान की चरणों की सेवा में हम लगाए। शंकराचार्य ने भी इसके लिए प्रयत्न किए और बताया अत्यंत दुख निष्पत्ति। संसार में जन्म मरण में दुख है और जन्म में भी और जन जीवन में भी दुख है। यदि किसी प्रकार से जीव इनसे ऊपर उठ जाए तो उसका परिणाम हो जाए। इसलिए अधिकांश आचार्यों ने मुक्ति की कल्पना की है। जब तक मुक्ति नहीं होगा ये दुख दूर नहीं होगा। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे बतलाया गया। कमन आरोमान दुख तयी सुखाय पत्ते पाप विपर्यास मिथुन चारे। संसार के सारे लोग लड़ रहे हैं दुख दूर हो जाए और सुख। विशेष करके मैं उपलब्धि करता हूं कि जो नमस्ते भी करते हैं सब गुरु के पास आते हैं। उनका सबसे पहला यही भी होता है, गुरु जी मैं आपके यहाँ हरिनाम ले रहा हूँ, हमारे क्लेश संसार से दूर हो जाए। बस ये प्रस्ताव है हमारा, व्यवसाय वाणिज्य खूब चमके, रुपए पैसे आए, रोग बना रहे। यदि सुन लिया किसी प्रकार से कि ये महात्मा ऐसे हैं तो उन्हीं के पास में भीड़ हो जाए। तो ये उद्देश्य है, बात तो ठीक है, सुखों की निवृत्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए हम चेष्टा करते हैं। और सारे भगवत अवतार, सारे हमारे आचार्य लोगों ने इसके लिए चेष्टा की, किंतु उनका अभिप्राय एक नहीं है, अलग अलग है। यह बात ठीक है, जो लोग संसार को सत्य मान रहे हैं और संसार के प्रति उनकी आसक्ति है, चाहे वो जितना भी भजन सजन करें बस इसी में वो आपत्त हो जाएंगे, उनको भक्ति का फल ठीक से नहीं। संसार में सुख नहीं मिलेगा ये समझ रखिए, साधु लोग सुधार हम लोग कहते नहीं है, नहीं तो संसार के लोग आशा छोड़ देंगे, निराश हो जाएंगे। इसलिए हम लोग चुपनी चुपड़ी बातें कहते हैं, भाई हरिनाथ को तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो जो चाहता है वही हो जाएगा, हमको पैरालिसिस हो रहा है क्या कोई उपाय? अच्छा हरिनाथ को कोई भी दुख हो उसके लिए हम लोग वास्तविक में यदि कोई करे तो ऐसा हो जाएगा, किंतु यह जीवन का उद्देश्य है। हमारे पर्वतीय आचार्यों ने दोनों चीज को लिया, संसार के दुख निवृत्ति हो और भगवान के चरणों की सेवा मिले। इसके लिए रामानुज भद्वाचार्य इत्यादि ने, विष्णु स्वामी इत्यादि ने जगत में प्रचार किया, भाई ये संसार में सुख नहीं है, इसको छोड़कर भगवान के चरणों में शरणागत, साधु संतों के चरणों में शरणागत। जब तक भगवान के चरण कमलों की सेवा नहीं होगी तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं। इसलिए नारद जी ने संसारिक कामना वाले गुरु जी को भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि कहा। इसलिए हम लोग चेष्टा तो करते हैं और आचार्य लोग ऐसा करते हैं। अधिकांश लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो नारायण की सेवा को करते हैं। नारायण की सेवा करने से जीव का यथार्थ मुक्ति भी हो जाएगी और नित्य काल तक नारायण की सेवा करें। किंतु चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी इसके लिए ये सब चीजें तो पहले बतला दी गई रूप गोस्वामी को जानने के लिए ये समझिए या महाप्रभु रूप गोस्वामी के विचार दो प्रकार के एक सार्वकोचित विचार है और दूसरा है सिद्धात्मक विचार हम साधकों के लिए कैसे हम संसार से इन दुखों से दूर होकर और परमात्मा राज्य में प्रवेश करते हैं ऐसे उपदेश सुनके जो हम लोगों के लिए संसारिक लोगों के लिए अभी उपयोग और दूसरे उनके विचार हैं जो इनसे निवृत्त हो चुके हैं या इनके प्रति उनका ध्यान नहीं है पूर्व वर्षों के संस्कार से जन्मों के संस्कार से और इस जन्म के संस्कार से उनको राधा कृष्ण की सेवा में परम अनुरक्ति हो गई है लोग जो आज तक चैतन्य महाप्रभु के पहले किसी ने नहीं दुख अपने आप दूर हो जाएंगे उन लीलाओं के चिंतन स्मरण और भजन साधन से और एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जो रामानुज के लिए मध्वाचार्य के लिए विष्णु स्वामी के लिए सिद्धा स्वामी के लिए यहां तक कि हनुमान जी के लिए भी उद्धव के लिए भी जो संभव नहीं हुआ वो उनको आनंद या प्रेम की प्राप्ति होगी आनंद हमारा मुख्य ध्येय है हम लोग ये समझते हैं कि संसार के दुख दूर होने पर साथ ही साथ अपने आप आनंद भी जाए जैसे किसी का कोई गला दबा रहा हो जरा छोड़ो छोड़ो मैं मरा तो उसको जब आदमी छोड़ देगा तो अरे मैं बच गया इसी को आनंद समझते हैं इसी प्रकार से संसार में जितने कष्ट हैं उन कष्टों से निवृत्ति को लोग आनंद मानते हैं किंतु इसमें आनंद नाम की कोई चीज नहीं है ये दुखों से केवल निवृत्ति संसारिक लोग इससे अधिक नहीं समझते किंतु जिनको साधुओं का संग हुआ है एक जन्म नहीं 10-20 जन्म वो लोग सोचते हैं ऐसा है नारायण की सेवा में आनंद है ये ठीक है लक्ष्मी की भांति किंतु वायस्पर्य नहीं है वो अधिक प्रीति के साथ में ममत्व के साथ में उनकी सेवा नहीं होती इसलिए आनंद भी सीमाबद्ध होता है इसलिए चैतन्य महाप्रभु या रूप गोस्वामी की शिक्षाओं में दो प्रकार के विचार करते हैं एक साधकोचित और एक सिद्धोचित साधकोचित से उनके जो विचार हैं कैसे जी इन दुखों से निवृत्त होकर के राधा कृष्ण के चरणों में जो प्रेमा भक्ति है इसमें उसको लोभ कैसे प्राप्त होगा ये साधकों और भाव अवस्था की जो साधन है भाव अवस्था का ये सब साधकों इसके बाद में सिद्धात्मक या सिद्ध को उचित लालसा का वर्णन किया इन लोगों ने अपने ग्रंथ ये दूसरे इसमें जो बताया गया अन्नाभिलाषिता ज्ञान कर्मा जनाकृत आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति इसमें जो साधकों की साधन करते हुए वैष्णव से या शुद्ध गुरु से दीक्षा और शिक्षा लेकर के भजन में जब हम प्रवेश करते हैं तो विषम रूप में बड़ी प्रीति के साथ में ममत्व के साथ में गुरु वैष्णव की सेवा करते और उनसे इन कथाओं को सुन करके कैसे साधन भजन होता है ऐसे श्रवण गुरु से इनको सुन करके ठीक ठीक वैसे साधन इसमें उन्होंने बतलाया उपदेशामृत साधारण लोगों के लिए उपदेश से अमृत का पालन करना बहुत आवश्यक है मन वे क्रोध वे जीवा वे उदर वे उपस्थ वे ये 6 वे किंतु अपनी चेष्टा से नहीं होगा कैसे होगा मन में तो रखेंगे हमारे देश दूर हो जाए किंतु इसके लिए अभिशांत ना अभिशांत हरिकथा का श्रवण अभिशान सब जितने साधने ऐसा नाम करेंगे, दिन रात नाम करेंगे, जो कोई भी मन का वेग आने नहीं पाए, क्रोध का वेग नहीं आने पाए, स्त्रियों के प्रति जो वेग है, स्त्रियों का जो पुरुषों के प्रति वेग है, उपस्थित ये सब ये अपनी चेष्टा से लाख नहीं होगा। विश्वामित्र 10,000 वर्ष तपस्या की एक पैर की झंकार पर ही उनका ये सब कुछ दूर हो गया। ये अपने बस की बात है, इसलिए जो निरंतर सद्गुरु का वादा करेगा, उनकी निष्कपट रूप में सेवा करेगा, अपने प्राणों को उनके चरणों में समर्पित कर देगा और निरंतर हरिनाम करेगा, हर कथा सुनेगा, उसी का चिंतन करेगा, ये वेग छह वेग अपने आप शांत हो जाए, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव इन वेगों को शांत करने के लिए निरंतर हरिनाम करते हैं, वैष्णव के अनुगत में साधन इसी के द्वारा है। इसी प्रकार के छह दोष बतलाए, अत्याहार प्रयास प्रजल पौण्य मात्र जन संघर्ष लौ अधिक खाओ पियो मत, अधिक आंखों के जो दृश्य है उनको अधिक मत देखने जाओ, अधिक जन संग मत करो, मैंने पीछे लोगों का मायावादियों का दूसरे लोगों का संग मत करो, उनको मित्र मत बनाओ, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों को मित्र बनाओ, अत्याहार प्रयास प्रजा को प्रजाग्रह मत करो, नियमाग्रह नियम में आग्रह मत करो, नियम में अनाग्रह मत करो, इसकी व्याख्याएं करो। इसके बाद में छ गुण भक्ति दानशील उत्साह से करो, उत्साह निश्चय धैर्य सत्सत कर्म प्रवर्तना संग त्याग सत्य सदृति सत्य भक्ति उत्साह के साथ में मरे हुए घोड़े की तरफ में चल रहे हैं उसे भक्ति की स्थिति नहीं है, उत्साह के साथ निश्चित कृष्ण मिलेंगे ही, उत्साह सतत कर्म समर्थना भक्ति के अंगों का दिन रात निरंतर पालन करो। जिस प्रकार से एक विषय व्यक्ति अर्थ को रोजगार करने के लिए इतना परिश्रम करता है, काम ही नार किया लोग ही एक कानून स्त्री पर जैसे आसक्त होकर के जैसे गधा गधी के प्रति उसके कुत्तों के प्रति लज्जा सब कुछ छोड़ करके उसके लिए प्रयत्न करते हैं, धन के लिए जैसे कोई विषय व्यक्ति जिसके लिए प्रचेष्टा करते हैं, अरे भक्ति के लिए उसे लाखों गुणों अधिक प्रयास तब तक कर्म प्रवर्तना संग त्याग असत्संग का त्याग करो विषय लोगों का, और सबों ने जिस मार्ग से चल करके अपना जीवन का निर्वाह करते हुए भजन किया है वैसा ही करो, अधिक मत करो, पढ़ाते जाओ ऐसा नहीं, जीवन के निर्वाह के लिए जितने जरूरत है बस उतना ही करो, अधिक मत करो, भिक्षा उतना ही मांगो जितना कि तुम्हारा चल जाए, अधिक भिक्षा मत करो, इस तरह से निर्वाह करते चलो। वैष्णव के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, कनिष्ठ के प्रति कनिष्ठ, मध्यम के प्रति मध्यम और उत्तम के प्रति उत्तम सेवा की भावना, इस प्रकार से करते ये सब क्या है, ये साधु यहां तक कि भावना के अनुसार में भाव भक्ति जब हम करते हैं कैसे बिल मंगल की भांति ये लोग साधक हैं, अभी हम लोग अभी साधक के कोटि में अभी प्रेम के या भाव के साधक में अभी नहीं आए हैं, अभी हम लोग प्रतिशाध्या भवित शास्त्र भाव अभी अपने इंद्रियों से साधन कर रहे हैं, किंतु ये जगदेश नहीं है, बहुत निम्न कैसे उसमें प्रवेश करेंगे, कृष्ण अनुशीलनम भक्ति कृष्ण का अनुशीलन शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु के अनुगत निरंतर। अच्छा थोड़ा सा ये संसार का काम कर लिया, थोड़ा सा ये कर्म नहीं होगा प्रेमा भक्ति को वृत्ति भक्ति कृष्णानुशीलन जैसे हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी कर रहे हैं, ये भी भक्ति अनुशीलन है। बस ये हमारे पितृ गंग जी कर रहे हैं, ये भी कृष्ण अनुशीलन है। हमारे रूप गोस्वामी जी जो भजन की शिक्षा जो देते हैं विशेष रूप में, जो कि प्रेम से आरंभ होता है, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, जैसे कहूं मैं कब वृंदावन में जब राधा कृष्ण अपने विलास में क्लांत होकर के कदम्ब के वृक्ष में छाया में बैठ जाएंगे, उस समय अपने हाथों में चामर लेकर के कब होंगे। अच्छा, इसमें ये जो उनकी जो भावना है इसके बारे में, इसमें अन्य विलासिता है कि नहीं, कोई जरूरत की चिंता करने की छोड़ने की वहां, वो सब दूर हो गया पहले। आज ज्ञान कर्म आदि अनावृत इसको छोड़ने की कोई उसमें है कल्पना, ये भी नहीं। भावावस्था में जो और चीजें हैं इसको भी पार कर गए, सिद्धांत उसकी चिंता कर, क्यों ऐसा कर, क्योंकि वो खास राधा जी की किन करी, उन्होंने जैसे उनकी सेवा की हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, ऐसे वो मानो वो साधक हैं इसलिए हमको वो शिक्षा दे। यदि रूप गोस्वामी नहीं होते, हमारे चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार की स्फूर्ति नहीं कराते, सब दामोदर इत्यादि स्फूर्ति नहीं कराते, ये तो स्वरूप ये भी बाह्य बात। रूप गोस्वामी को कोई स्फूर्ति करानी है नहीं, मैं समझता हूं रूप गोस्वामी का जो अंतरशरी है रूपमंजरी का, उसमें कुछ रूपमंजरी से कृष्ण राधा की सेवा की बातें सीखेंगे। रूपमंजरी को राधा जी की सेवा के लिए या कृष्ण की सेवा के लिए कुछ सीखना नहीं है, नहीं? क्यों? उनका स्वभाव सिद्ध अधिकार है। कृष्ण ऐसा कहेंगे जैसे श्रीमती जी आपको मैं चमर दिलाऊंगा, ऐसे ये उनके लिए समर्थन नहीं। सेवा की वासनाएं जितनी रूप मंजरी इत्यादि में है, लौंग मंजरी गति मंजरी में स्वाभाविक वो किसी ने भी, इसलिए अपनी स्वभाव सिद्ध स्थिति में उन्होंने कृपा करके हम लोगों के लिए अपने को साधक मान करके भगवान से जो प्रार्थना की, रूपमंजरी से राधिका जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ललिता जी से प्रार्थना कर रहे हैं, विशाखा जी से जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये जिनको लोभ उत्पन्न हुआ है प्रभु लाखों लाखों जन्म के बाद पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म के वैष्णव के संस्कार से उन लोगों के लिए वो बातें की, साधारण लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए बात वेग क्रोध वेग मनोवेग ये सर वैष्णव सदाचार सीखो और श्रवण कीर्तन स्मरण करो, बस इतना है। और इससे जो ऊपर वाले हैं उन लोगों के लिए जिनको रोग उत्पन्न हुआ है, ऐसे परम सौभाग्यवान जीवों के लिए उन्होंने ये सब महाप्रभु जी के आदेश से निर्देश से उन्होंने ये सब लाए। एक ऐसी श्रृंखला की है विचारों की, कैसे हम उनको पा सकते हैं। यदि भरत महाराज संसार में एक हिरण की चिंता करते 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 यदि हिरणी बन गए, तो कोई भगवत चिंतन करते हुए नारायण का चिंतन करते करते नारायण का तो क्यों नहीं हो जाएगा, इसी को कहते हैं साधु, इसी को साधु। कोई कोई ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म हो जाए, इस रूप गोस्वामी ने हम लोगों को थोड़ा सा सावधान होकर के चिंतन करने के लिए उन्होंने क्या कहा, कृष्ण की चिंता करो, किंतु कैसे चिंता करो, उनके परिकर लोग कृष्ण की जिस प्रकार से सेवा करते हैं ऐसे करो, कृष्ण की अलग रूप में चिंता मत करो, कैसे करो, जसो जैसे जसोदा जी कृष्ण का की सेवा करती है प्रेममयी, उसे कृष्ण की चिंता करो और यशोदा मैया की सेवा की चिंता करो, कृष्ण से अधिक यशोदा मैया की सेवा की चिंता करो। और खबरदार यशोदा मैया बनने के लिए कभी चिंता मत करना। क्या करना? यशोदा जैसी सेवा की चिंता करना। अनेक यशोदा मैया की चिंता करते करते यशोदा मैया जी यशोदा जी मिल जाएगा और तुम्हारा सब स्वरूप स्वरूप सब समाप्त निर्विशेष वादी बन जाएगा। इसी को भी वैष्णवों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कृष्ण का स्मरण नहीं केवल केवल यशोदा जी का ही स्मरण नहीं, उनकी सेवा की भावना की चिंता करो। ऐसे ही हमको इससे भी यदि कृष्ण का स्मरण करो, कौन से कृष्ण के महाभाव सदसरा जो हमारे रूप गोस्वामी के आराधना देवी श्रीमती राधिका के प्राणनाथ उनका चिंतन कैसे चिंतन श्रीमती राधिका और कृष्ण का मिलन का भी चिंतन मत करो मत करो। वैसे कैसे करो? हमारे रूपी मंदिर इत्यादि शक्तियों में जिस भावना से राधा कृष्ण जुगल की सेवा की और उन दोनों जुगलों में राधा जी का अनुगत्य अधिक करते हुए जैसे सेवा की है ऐसे सेवा की भावना इस रूप को स्वामी ने ऐसे ही किया। जैसे एक उदाहरण के लिए आप लोगों को बताऊं, जब रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी तो अपनी लीला में उनकी इसी प्रकार से सेवा करते हैं उसी की भावना का एक उदाहरण है। साधारण लोगों के लिए नहीं है, जो कभी दुख दूर करना चाहते हैं शरीर में आसक्त है ऐसे लोगों के लिए नहीं, जिनको रोग उत्पन्न हुआ है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, यहां तक वैकुंठ की भी जरूरत नहीं है, यहां तक कि द्वाराधीश कृष्ण की भी आवश्यकता नहीं है, राम की आवश्यकता नहीं है, जिनको यशोदा नंदन की भी जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है राधाकांत की जरूरत, गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर की जरूरत है, मनमत कृष्ण की जिसको आवश्यकता है, राधा जी के कांत की जिनको आवश्यकता है, वो लोग करेंगे क्या? ऐसे प्रार्थना सथोयन नावेच पुनरीह मया मान धनया विषंतम स्त्री वेशन सुबल सुहृदम बालय गिरा इदं ते शातूतं वचनम अवधार्यो छलद्धि छलाट्टो को गोपवरम अवरोक्ष्यामि किमहम। तब रूप गोस्वामी जी कहते ऐसे मानवता ये साधक है और कहें कब हमारी ऐसी अवस्था हो सर्वो अयम नावेक्ष पुनरिह मया मान, ये सब हमारे पास में कभी खबरदार ना आने पाए, किसको कह रहे हैं? रूप मंजरी को कह रहे। देखो देखो मेरी सखी, जरा खड़ा हो जाओ बाहर वृंदावन में के भी कुंज के बाहर, कहा कि ऐसा कब हमें आदेश दे, मैं उनके आदेश से कुंज दर के द्वार पर खड़ी हो जाऊंगी। और राधा जी कहेंगे सठो एम कृष्ण बहुत सठ है ठोक तरह खबरदार हमारे पास में ना आए ना बेचा, मैं इसे देखूं नहीं, मैं ये देखना नहीं चाहती, मया मान कन्हैया मैं मुझको ठगे ने कितनी बार ठोक तथा इसलिए मैं उनको नहीं देखना, मान कन्हैया मैंने मेरे मान की धनी ना हमारे सामने आए। विषंतम देखो देखो वो आ रहा है, कैसे आ रहा है? विषंतम इस कुंज में प्रवेश कर रहा है, स्त्री वेशम सुबल सुहृदन सुबल का सुहृद सुबल सुबल ने उसको स्त्री का वेश सजा दिया है और स्त्री वेश में बड़ी मोहनी श्यामा गोपी के रूप में पसार रहा है, बहुत काफी विनती करेगा प्रार्थना करेगा तुम्हारे चरणों में लौटेगा किंतु खबरदार खूब कठोर होकर के रहा, तुम ही ऐसा क्यों नहीं कर मुश्किल तो है ये मैं कठोर होने की चेष्टा करता हूं तो देखते ही क्या हो जाता है, मेरा मान सब टूट हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर तुम कठोर होकर कहते हो। सुबल सिंह बाहर उसे मना करके भोतम भीतर में आओ इदम ते शापुतम इदम ते तुम्हारे चरणों में वो गिर करके प्रार्थना करेगा कि मैं श्रीमती जी का आकर्षण करना चाहता हूं। तुम कठोरण हमारे समान द्रवित मत हो जाना, ललिता के समान भी द्रवित मत, ललिता भी द्रवित हो जाती है दिशा का भी, किंतु तुम मैं जानते हो हमारे आदेश को पालन करने के लिए तुम कठोर रहे। सातुतम बहुत का तुम विनती करें हैं वचन अवधार को छल करती, मैं उनको उनके आदेश को सुन करके उच्छलित भी मेरा हृदय छल प्रेम से इशारा हो। वो ऐसा आदेश हमको श्रीमती जी ने दिया उस धूप को रोकने के लिए मैं जरूर हूं। और खड़ी हो गई जर्किंग करी सुबह सनुका दुबारी नित्यम परस्य गुण सत्य शिव। ये रूप शांत अपने आप नहीं लिख सकते जो कृष्ण हमारे चरणों में गिर हैं, तो ये कौन लिखेगा? और जो सखी ने देखा, तुम सखी ने देखा, तुम विद्यार्थी ने देखा, वो तुम विद्यार्थी कौन है? प्रमोदान वो कहा क्या कहा है? वो कहा जब किंग करी इस बहुशा बहुत सी किंग करियां हैं उनके चरणों में कृष्ण आस्तुत आस्तुत कर रहे हैं रुक्मंजरी इत्यादि के चरणों में और उनको जाने नहीं दे रही है। राधिका की बात इसलिए रुक्मंजरी के चरणों में उन्होंने और भी कहा है कदा अवसर समय कि भविष्य ही स्वामी हो जन्म में अनुरागत पृथ्वी निजत पुंजोदरे प्रयासा तबादि के विविध वर्ण कंथद्रवि चीरम विरचयिष्यति प्रकट पत्र बल्ली श्री। ये सब लोगों के बारे इनको कहना भी साधारण लोगों में ये संभव नहीं। इतने सुंदर सुंदर भाव इसलिए जो रूपानुग वैष्णव हो गए हैं ऐसे लोगों को ही रूपानुग कहते हैं। इसका नाम है उत्कलिका बल्लरी। उत्कलिका बल्लरी माने क्या? उत्कली प्रस्फुटी बल्लरी प्रेम की बल्ली बल्लरी लता है। ऐसी बल्लरी मैंने नए नए फूल नए नए तरंगे उनमें आ रही हैं हृदय को उद्भासित कर देती हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी इदम सेवा होगा क्या हमारे सेवा का ऐसा सौभाग्य होगा? सुलभम जैन जुवयो छठा दस्य प्रेमण स्पर से नहीं सुप्तावपि मम पदार्थे अस्मिन् जुस्मत प्रज अनुष निवासेन जनित तथा पश्चाचाबंद परिवृत भरो मां दीर्घय। ऐसा हमारा कब सौभाग्य होगा जो श्रीमती राधिका जी मैं जब समर प्याजन करते हैं तो कहेंगे जैसे इसको छोड़ो जरा पंखा जरा पानी ले आओ ये सब सेवाएं करती। इसलिए बताया रूप रघुनाथ दास गोस्वामी जी का है तांबूला और पाप मर्दन पयो दाना विशारा जुड़ी वृंदारण्य महेश्वरी सब सभी प्रदर्श जो सोशयंती या प्रिया प्राण प्रेस सखी कुला सतिकिला संतोषिता भूमिका के भूमि स्वरूप मंजरी मुखा सत्ता सिका। किस प्रकार से राधिका जी के लिए कृष्ण के लिए नहीं कृष्ण अपनी की सेवा के लिए बुलाएंगे तो ये नहीं जाएंगी यदि राधिका जी हार जाएंगी ये बतला रहे थे किसी पास के लिए इत्यादि में तो ये ताली बजाएंगे कृष्ण के हाथ पर और राधा जी के प्रसन्न राधा जी के सुख में सुखी और उनके विरह में दुखी। राधा जी को दुख नहीं कि उनके दुख में दुखी हो उनके विरह में वैसे ही विरह का अनुभव करेंगे। ये सब रूपांतर जो सब समय राधा जी की सेवा में यहां तक कि ललिता दिशा काम के पास में जाने में संकोच करती हैं जहां पर कृष्ण के साथ में वो पीड़ा विलास में मत है किंतु रुक्मंजरी इत्यादि को कुछ भी जरूरत नहीं यदि अर्थनग्न अवस्था में भी हो तो वो झट उनके पास में चली जाएंगी और उनको आदर देकर के उनकी सेवा करेंगे। ऐसी ये रूप मंजरी इत्यादि रूप मंजरी मुखा मुखा माने मुख सब शक्तियों में ऐसी और भी कितने हैं, मैंने एक पद लाया, ऐसी कितनी सबूत उनकी सेवाएं। इसलिए रूप गोस्वामी का ये अभिलाषा है, ये कहां तक जाएगा? उत्तमा भक्ति कृष्णानुशीलनम, वो दो तो रह जाएंगे यहीं पर, कौन अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान ये रह जाएंगे यहीं। ये कहां तक जाएंगे? साधन अवस्था तक, भावावस्था में भी ये ले जाएंगे। भावावस्था के साधकों को अन्नाभिलाषिता और ज्ञान कर्म ये दोनों अपने आप छूट है, उन लोगों के लिए ये लक्षण नहीं। उन लोगों के लिए लक्षण क्या है? कुछ प्रेम का मर्यादा वही और इसके बाद में मर्यादा से रही मातृत्व। इन भक्तों के लिए जो उनको लोभ हो चुका है, इनको इसकी भी जरूरत नहीं, वो सब समय सेवा की चिंता करेंगे, जो मंजरी अपने स्वरूप में स्थित होकर के सेवा करेंगे और उसी का आभार अपनी प्रार्थना। जैसे फिर क्या कहते हैं, विशेष करके ये राधा पक्षी है रूप मंजरी का, वंशी करण निपतिता स्खलितम शिखंड भ्रष्टं चपीत वसनम ब्रजराज सोनो जस्या प्रकाश सरकार विमुक्षित तंग राधिका परिचरामी कदारसेना। जिनको दर्शन करने से ही कृष्ण के हाथों से बंसी गिर जाए, उनके पटम पर कृष्ण के शरीर से उतर करके गिर जाता है, कब पता नहीं। और विशेष दर्शन से उनको अपने शरीर का भान नहीं रहता, जमीन पर मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। ऐसे राधा जी की महिमा है, ऐसे राधा जी के चरण कमलों को मैं कब प्रेम के पूर्वक मैं सेवा कर, रस के साथ में सेवा। ये सब ऐसे महात्माओं के रूप गोस्वामी ने आज तक जितने भी महात्मा हुए हैं, यहां तक कि प्रबोधानंद सरस्वती से भी कम नहीं, इसे वो तो मुझे सभी भावापन्न है तुम विद्या की, इसलिए उतना नहीं दे सकते हैं जितना कि हमारे रूप गोस्वामी की रूप मंजरी के रूप में सेवा की भावना। इसलिए वो महान भाव बहुत धन्य है जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर रूप गोस्वामी के चरण में अपने को भी उनके कृपा के लिए लालसा रखते हैं। वैसे महापुरुष जगत में धन्य है, ऐसे महापुरुषों के चरण में हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि रूप गोस्वामी के चरण में हम लोगों को भी ऐसे आराप अधिक हो गई है। इसलिए आज लाखों जन्मों लगे उनकी महिमा का वर्णन लोग एक भाव में ही कितने समय लग जाएंगे। इसलिए आप लोगों को राधा कृष्ण की ऐसी सेवाओं में आप लोगों को रुचि हो, लोभ उत्पन्न हो, यदि महाप्रभु के संप्रदाय में आकर के रूप गोस्वामी के प्रति और उनके भाव के प्रति लोभ हो ये यही हुआ तो हम लोगों का गौर वैष्णव नहीं होना ही अच्छा है। इसलिए हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हमारा अधिकार है कि लोभ में अधिकार की कोई जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी तापका जितनी प्रकार की शास्त्र की युक्तियां हैं उस सबको छोड़ करके तत्पर तापका शास्त्र युक्ति न धर्मन ना धर्मन निरूप ये सब हमारे गोस्वामी ने कहा। इस प्रकार से जिसको लोक हो जाएगा उस लोक के द्वारा तब करके रूप गोस्वामी के रघुनाथ दास गोस्वामी के विचारों को पढ़ेंगे, ऐसे महात्माओं के पास में जाएंगे और सुनेंगे रूप के चरणों में हम लोगों का अनुराग हो ममता हो और उनकी कृपा की हम प्रतीक्षा करें। यही बात करते मैं अपना
দীক্ষিত হইয়া বলিয়ে তুমা পদ তাহারে প্রণতি করি, যিনি দীক্ষিত হয়ে পাদপদ্ম ভজন করবেন ভগবানের পর দণ্ডবন্নতি প্রণামাদি, তার মানে সতীর্থ যারা তাদের প্রতি ওই ব্যবহার থাকবে। দীক্ষিত হইয়া ভজে তুয়া পদ তাহারে প্রণতি করি, অনন্য ভজনে বিজ্ঞ যেই জন তাহারে সেবিব হরি হরি তার সেবা করব। এই অনন্য ভজন কে করছেন? মধ্যমাধিকারী ভক্ত, তার সেবা করতে হবে। তারে আমার কল্যাণ, তার কাছে হরিকথা শুনতে হবে, তার কাছে তত্ত্ব দর্শন জানতে হবে, বুঝতে হবে, আবার আমার হৃদয়টাও তো সেরকম তৈরি হবে। সর্বভূতে সমাজে ভক্তের মতি পাহাড় দর্শনে মানি আপনারে ধন্য সুসঙ্গ পাইয়া চরিতার্থ হইলু জানি। কপটমতি বৈষ্ণবের প্রতি এই ধর্ম কবে পাব, কবে সংসার সিন্ধু পার হয়ে তব ব্রজ পুরে যাব, এই তো তার চিন্তা ভাবনা। থাকলেও তো কেউ এমন ভাব নিয়ে বসে আছেন, সাধারণ মানুষ তাকে চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীব সবাই তো নন, এর ভিতরে কিছু পার্সেন্ট দর্শী আছেন, যাদের শুভেচ্ছা শুভাশীর্বাদে সব সুবিন্যস্ত উপায়ে চলছে। একথা শাস্ত্রেই ভগবান বলে রেখেছেন, সাধুগুরু বৈষ্ণব যদি এই জগতে না থাকেন তাহলে জগৎ চক্র সুবিন্যস্ত উপায়ে চলতে পারে না, একথা বলা আছে, ওটা বুঝে নিতে হবে। ওর অভাব হবে না। আমি যখন তত্ত্ব দর্শন শিখব, জানব, বুঝব, তখন আমি সেই রকম ধরনের ডিসিপ্লিন নিয়ে চলব। জীব সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান, এই তো আমাদের তত্ত্ব দর্শন শিক্ষা। আমার কেউই অবহেলার পাত্র নন, অবজ্ঞার পাত্র নন, অস্বীকার করবার পাত্র নন, সকলকেই তার তত্ত্বাদুপযোগী সম্মান আমাকে দিতে হবে। এই তো চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা থিওরি, প্রাণাদপি শুনিচেন তররপি সহিষ্ণু না অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা। মানে দৈন্য দয়া অন্য মান প্রতিষ্ঠা বর্জন চারি গুণে গুণী হই করহ কীর্তন। ইচ্ছা হয়েছে আমার, আমি একটু কীর্তন করব, কিরকম ব্যবস্থা নিতে হবে? সকলের আগে গিয়ে কীর্তনটা ধরে ফেলবো না? কীর্তন মণ্ডলী সেখানে সব বিভিন্ন অধিকারী বসে আছেন, বৈষ্ণবদের কাছ থেকে অনুজ্ঞা পাওয়া চাই, পারমিশন পাওয়া চাই, অনুমোদন পাওয়া চাই, তাহলে আমি কীর্তন ধরবো। আমি বড় কীর্তনিয়া, সুর তাল লয় মান সব জানা আছে, তাদের নির্দেশ না পেলে আমি কীর্তন ধরতে পারব না, আউট অফ এটিকেট, শিষ্টাচার নয়, শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ব্যাপার, ওটা ওটাও শিখতে হবে। বৈষ্ণবীয় সদাচার এটিকেট তো আরো উপরের কথা, এ তো জাগতিক, এর মধ্যে এটা এগুলো ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করলে হবে না। তারপরে কীর্তন করবার সময় আমি কি জাতীয় কীর্তন করব? আমি কি রসকীর্তন আরম্ভ করব, না আমি প্রার্থনামূলক কীর্তন করব যাতে আমার কল্যাণ হয়, এরকম কীর্তন করব? ভাতটা ছাড়তে হবে, ভালোটা নিতে হবে, নেগেটিভ পজিটিভ দুটো সাইড। জগতের সাধন ভজন বিরোধী যে এলিমেন্ট, তাদিওকে ছাড়তে হবে আমাকে, সেই সব বদভ্যাস কুঅভ্যাস ছাড়তে হবে আমাকে, তা নাহলে তো ভালোর স্থান নাই। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই তো হৃদয় আছে, হার্ট আছে, তাহলেও কেন আবার সমালোচনা হয়? এ ভদ্রলোক খুব সুবিধার নয়, ও চিত্তবৃত্তিটা খুব খারাপ, কেন একথা বলা হল? আবার কাকু বলা হচ্ছে না, ইনি খুব সদাশয় ব্যক্তি, দুরকমই বলা হয়তো। প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়েই তো ভগবানের বসবার আসন। এই হৃদয় সিংহাসনে যদি আমরা প্রেমময় ভগবানকে বসাতে পারি তাহলে তো আমাদের কল্যাণের মধ্যে। আর যত উল্টোপাল্টা চিন্তা, দুনিয়ার কামনা বাসনা সব কিছু ভরপুর করে রেখে দিয়েছি সেখানে জঞ্জাল, সেখানে কি ভগবান বসবেন? একবার জায়গা হয়েছে কি? সেটা কীর্তন করা হচ্ছে, হে বৈষ্ণব ঠাকুর তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ। আরে গোবিন্দ তো কইতে পারেন, কিন্তু আমার হৃদয়টা ভগবানের বসবার উপযুক্ত বিশ্রামের স্থান সিংহাসন হল কিনা এটা তো চিন্তা করতে হবে আমাকে। এটা তো আমি ফোড়া দিতে পারছি না, ফোড়া দিতে গিয়ে ফেল করে যাচ্ছি। গঙ্গার পরশনে পশ্চাতে পাবন, দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। গঙ্গাকে স্পর্শ করলে তবে পবিত্রতা, আর গুরু বৈষ্ণব ভক্তকে দর্শন করলে পবিত্রতা। অনেক তফাৎ ব্যাপার তো, গুরু বৈষ্ণব বুঝি না আর গঙ্গার মহিমা মাহাত্ম্য বুঝি না। গঙ্গা জলেতেও ঠাকুর সেবা হবে কিনা এ আজ চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছে। আপনারা আমার কথা শুনে আমাকে পাগল বলে ঠাওরাতে পারেন, কিন্তু আমি পাগল নই। অনেকে থিওরি আজকাল আসছে, গঙ্গা কার পা ধোয়া জল? ভগবানের পা ধোয়া জল, তার নাম গঙ্গা। তোমার পা ধোয়া জল তাই দিয়ে ওর ভগবানের সেবা করবো কি করে? এই জন্য অতি বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী কিছু লোক আজকাল তারা গঙ্গা জলে পূজা করতে চাইছেন না। জিজ্ঞাসা করা হলো তাহলে কোন জল দিয়ে পূজা হবে, তাহলে তাই তো চিন্তার বিষয়। পুকুরে তো অনেক মাছ টাছ থাকে, অনেক জন্তু জানোয়ার থাকে, পোকামাকড় থাকে, হবে না ও জল চলবে না। কুয়োর জল, তার ভিতরে তো ব্যাঙ ট্যাং অনেক থাকে, তারাও তো বাচ্চি পেচ্ছাপ করে, তাহলে ওটাও তো চলবে না। নদীর জল, তার ভিতরে তো বহু মড়া টোড়া ভেসে যায়, কত হাবি যাবি ও চলবে না। তাহলে কোন জল দিয়ে আমি ঠাকুরের পুজো করব? বলে টিউবওয়েলের জল, পাতাল গঙ্গা। টিউবওয়েলের জল পাইপ দিয়ে তো আসছে, সেখানে ওয়াশার লাগানো আছে, চামড়ার ওয়াশার। আমি তো চামার, আমি চামার মুচি হয়ে বসে আছি, সুতরাং ওখানে ওয়াশার আছে। পাতাল গঙ্গা আসছেন, তিনি সবকে পবিত্র করছেন, আর ওই চামড়াটা পবিত্র করতে পারলেন না তিনি। বললে ও দিয়ে তো ঠাকুরের সেবা হবে না, তাহলে কি দিয়ে ঠাকুরের সেবা হবে? কোন জল? চোখের জল, সে তো একটা পরিত্যক্ত জিনিস, এই দিয়ে ঠাকুরের সেবা হবে? এইসব কিছু অতি বুদ্ধিমান অতি বুদ্ধিমতী কিছু ব্যক্তি আজকাল সমাজে এসে হাজির হয়ে গেছেন, তারা সব নূতন নূতন ব্যবস্থা দিতে চাইছেন। ভগবানের নাম করো, কোন নাম? মুখ্য নাম, গৌণ নাম নয়। অষ্টোত্তর শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম আছে, অনেকেরই মুখস্থ আছে, আমার মা বাপের অনেকের। হাজার আট নাম আছে, তার ভিতরে মুখ্য গৌণ অনেক রকম আছে। বলছেন মুখ্য নাম জপ করতে হবে, মুখ্য নাম কীর্তন করতে হবে, তাহলে ফল তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে। বলে মুখ্য নাম কোনগুলো? কৃষ্ণ গোবিন্দ মুকুন্দ ভুরাজ, এই নাম। বাছাবাছি, এত বাছাবাছি করে চলা যাবে? চলতেই হবে, বাছাবাছি দরকার, চলতেই হবে আমাদের, না করলে হবে না, চলবে না। সময় কই আমাদের? সেই জন্য তো সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। কি কথা এসছে বলুন? শিবানী পার্বতী দেবী, তিনি তো জিজ্ঞাসা করেছেন কোন নাম জপ করব। শিব ঠাকুর উত্তর দিলেন কি? সহস্র নাম কর। ও বাবা, ও তো অনেক সময় লাগে। রাম রমেটি রমেটি রমে রামে মনোরমে সহস্র নাম বিস্তৃলং রাম নাম বরাননে। এ বরাননে শিবানী, তুমি সহস্র নাম করো, বিষ্ণু সহস্র নাম। তো অনেক সময় লাগে, তাহলে কি করবো? আচ্ছা তাহলে রাম নাম করো। সহস্র বিষ্ণু নামের সমান এক রাম নাম। রাম 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 জপ করতে লাগলেন শিবানী। এর থেকে আরো সংক্ষেপ ব্যবস্থা আছে, তাই নাকি? বলুন তো কিরকম? সহস্র নাম নাম পুণ্যানাম ত্রিরাবৃত্তাদি জপ ফলম এক বৃত্তাসু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎপ্রযচ্ছতি। অঙ্কটা কষলে মানে কি হবে? সহস্র বিষ্ণু নামের সমান এক রাম নাম, তিন রাম নামের সমান এক কৃষ্ণ নাম। তাহলে কৃষ্ণ নাম করো তুমি। কৃষ্ণ 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 বলতে লাগলেন দেবী। শিবঠাকুর বললেন ওরকম বললে হবে না, এর প্রসেস প্রসিডিওর মেনে তোমাকে নাম করতে হবে। ও তাই বুঝি, তাহলে কিরকম হবে? ভালো, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এইটা বলতে হবে, অন্য নাম না। কোথা থেকে এলো এই নাম? এই নাম কোথা থেকে? তো বাংলা বাংলা মতো লাগছে। বাংলাকে মন্ত্র করে দিলেন? না গো, বেদের মন্ত্র, উপনিষদের মন্ত্র, কলি সন্তরণ উপনিষদের মন্ত্র, বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে এটা। সেই মহামন্ত্র, এমনি মন্ত্র না। এমনি মন্ত্র জপ করতে গেলে আসন লাগবে, দিক ঠিক করে বসতে হবে, পঞ্চপত্র পত্র লাগবে আসন করতে। এর নাম মহামন্ত্র। খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়, দেশ কাল পাত্র নাহি বলছেন। ন দেশ নিয়মস্তস্মিন ন কাল নিয়মস্তথা ন ছিষ্টাদো নিষেধস্তি শ্রীহরের নাম নিরুদ্ধক। সবসময় তুমি নাম করবে।
প্রাপ্ত নেই যায় किया जाता है एक मां श्री प्रिया जी के परिवार की सभा के द्वारा भी। पर मुझे कहने में संतोष नहीं, श्री स्वामी जी के श्री जगन्नाथ में वंदना करते हुए मुझे क्षमा करेंगे, उनके परिवार के श्री जगन्नाथ में वंदना करते हुए मैं ये कहने में साहस कर रहा हूं कि श्री स्वामी और उनका परिवार भी हुआ है। वो पदक आपको देता है पर वह भी स्वार्थी है, वह उस पद का आपको देता है स्वयं भी स्वयं। श्री स्वामी को आपको देती है उससे बनकर के आश्वासन है, सखियों का सखियों से बनकर के आश्वासन है मंडलियों का, सखी और मंडली के द्वारा आश्वासन को प्राप्त कर रहे हैं। वह आश्वासन भी गुंजा है और वह केवल गुंजे का घोड़े जिसको वेद और आश्वासन दे देती है पर वो वेद उसका वर्णन नहीं करती है, वे उसका वर्णन कर सकते हैं समझ नहीं है, और जब वर्णन करती भी है तो वहां पर रेवड़ी बनती है, केवल अपने अपने परिकर को दी जाती है। जो स्वामी जी का परिकर है, जो श्री विशाखा जी का परिकर है, ललता जी का परिकर है, श्री ललता जी ने श्री जुगल का जो आश्वासन प्राप्त किया, श्री रूप मंजरी जो जुगल का आश्वासन प्राप्त कर रही है, रूप मंजरी केवल मंजरी मंजरी लगाओ तो हमें बताएगी वहां पर भी रेवड़ी रेवड़ी बनेगी, वहां भी हमारे वस्तु नहीं वहां पर रेवड़ी बनेगी, वहां पर रेवड़े जो उससे आस्वादन प्राप्त करेंगे वे अपने अपनों को ही रहेगी, उनका आस्वादन उनका अनुभव उनकी वे अनुभूतियां उनके भी हित कर दे, परंतु वे हमारे लिए हित नहीं है, उनके लिए होंगे या कोई भी उनका जो शरण हो कोई जो उन तक पहुंच गया हो उसके लिए भी इच्छा होगी। परंतु श्री रूप मंजरी का ये जो गूंगे का आस्वादन है, श्री रूप मंजरी का ये जो रेवड़ी बांटना है या रेवड़ी बांटना उन्मुक्त रूप से एक सदावर्त के रूप में प्रकट होता है, तब जबकि श्री रूप गोस्वामी होकर के ये प्रकट होती है। श्री रूपमंजरी या तो भूमि भी करेंगे आस्वादन करेंगे, उनका जो आस्वादन है वह भूमि आस्वादन है, या तो वहां पर रेवड़ी बनेगी। परंतु रूपमंजरी में शास्त्रों के विवेचन करते हुए उसका उत्पादन करने की पूर्णता सामर्थ्य है, परंतु वे शास्त्रों के विवेचन में पड़ती रही। लोगों को पूर्णतः इस बात का ज्ञान है कि श्री कृष्ण क्या वस्तु है, वे प्रयोग कहती है कि नकल भोगना बिंदु तो हवा खेल लेंगे मित्र अर्जुन विभिन्न साधकों शुभ के सके भगवान पात्रता को ले, यह सिद्धांत तत्व का ज्ञान विराट अवस्था में उनको है, जो कि विराट का विराट कारण है, जो कि सूर्य के समान कृष्ण के माधुरी का भी प्रकाशक है और कृष्ण के ऐश्वर्य का भी प्रकाशक है। परंतु जैसे ही कृष्ण उनके सामने आते हैं, कृष्ण मिलन का वह माधुर्य कोट कोट चंद्रमा के प्रकाश के समान उन्मादक होकर के केवल कृष्ण के माधुर्य का ही आकर्षण कराता है। विवाह की स्थिति में तो उनमें ऐश्वर्य का ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, पर जीवन की स्थिति में शुभ गोपाल रूप से कृष्ण के केवल माधुर्य का ही वर्णन होता है, माधुर्य का ही के आत्मा अपने वर्ग के सामने देती है। विधायक की स्थिति में ऐश्वर्य माधुर्य दोनों का वर्णन करने लगती है, परंतु मिलन की स्थिति में केवल माधुर्य का आकर्षण करती है। तो शिव गोपाल को ऐश्वर्य का ज्ञान तो है, पर ऐश्वर्य का ज्ञान होते हुए भी कृष्ण माधुर्य की वह मधुरमा कृष्ण माधुरी का भाव उन्मादकता कोट कोट चंद्रमा की उन्मादकता से भी बढ़कर के उन्हें ऐश्वर्य का वर्णन कर सकते की कृष्ण का दर्शन किया जा रहा है, पर उसने संबंध से ही वहां पर कृष्ण को दिखाया रहा है और वहां पर ऐश्वर्य का दर्शन मृत संबंध के द्वारा मानव से आकृत होकर के विराजमान है। अतः जो परिगर है वह पूरे का स्वाद लेता है, परिगर गीला है, श्री कृष्ण परिगर गीला है, पर यदि कोई आचार है तो आचार है श्री गौर शास्त्रों के विवेचन में भी शास्त्रों का तुलनात्मक परंपरा शोधन करते हुए शास्त्रों के परम सार को प्रस्तुत कर सकने का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए परम सार को प्रस्तुत कर सकने का और एक तार्किक और भौतिक आधार पर शास्त्रों के उस सार को प्रस्तुत कर सकने का अधिकार यदि किसी को है और सुविधाएं किसी को प्राप्त है तो वह सुविधा प्राप्त है, वह अवरोध प्राप्त है श्री रूप गोस्वामी। अतः श्री रूप गोस्वामी का जितना हमारे ऊपर अवदान हो सकता है, जितना वे हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, इतनी रूप मंजरी नहीं हो सकती। फिर जब रूप मंजरी नहीं हो सकते तो फिर सखियों की और स्वयं स्वामी जी की बात को कहना क्या, स्वामी जी का जो सखियों का और श्री स्वामी जी का जो आस्वादन है उससे भरकर के रूप मंजरी का आस्वादन है, फिर श्याम सुंदर जी को कहना ही क्या, मुझे रूप मंजरी कोई तो प्राप्त नहीं है, वहां सुविधा प्राप्त नहीं है, तो फिर दूसरों को श्री रूप गोस्वामी के इस महिमा को क्योंकि ये प्रयोजन का विवेचन कर सकते हैं, ये परमात्म तत्व का विवेचन कर सकते हैं, ये भगवत तत्व का विवेचन कर सकते हैं, ये अवतार लोकहरण के द्वारा अवतारों का जो विवेचन है, अवतारों के विभिन्न जो विचित्रियां है, अवतारों के विभिन्न जो प्रकार है, उनका तुलनात्मक और उनके परामर्श अवतारों में श्री कृष्ण स्वरूप की स्वयं का विवेचन कर सकने का इनको अधिकार प्राप्त है, रूप मंजरी को अधिकार प्राप्त है। अगर ये हमारे लिए सिद्धांत को सुधर करने में श्री रूप गोस्वामी जितने उपयोगी है कितना कोई दूसरा श्री रूप गोस्वामी जी के उस संपूर्ण अवदान को जो पहुंच किए है उस पहुंच के अवदान को जिस दृष्टि से भी देखा जाए वह अपूर्ण है, वह पानी से पाए है। श्री वृंदावन के रसोपासना के पांच जो तत्व है वाक्य तत्व, उन वाक्य तत्वों का जैसा विवेचन श्री रूप गोस्वामी साहब ने किया और उसको अपने लीला काल में जैसा प्रकट करके दिखाया, उसका प्रयोगात्मक स्वरूप जैसा दिखाया, केवल सिद्धांत स्वरूप ही नहीं प्रयोगात्मक स्वरूप जैसा दिखाया, वैसा कोई दूसरा दिखाने में समर्थ एक ही है। श्रद्धा विशेष शक्ति में श्री मुक्ति अंगदेवन श्री गोविंद स्वरूप को प्रकट किया और गोविंद स्वरूप को प्रकट करके जिस भाव के द्वारा श्री गोविंद स्वरूप की सेवा प्रकट की, वह साधकों के लिए जो साधन के परम वाक्य तत्व होकर के विराजमान, जो साधन के शक्ति देता होकर के विराजमान, अवधेव के जो अध्यात्म देवता होकर के विराजमान हो, उन श्री गोविंद भक्त को श्री गोविंद स्वरूप को उन्होंने सामने कर दिया। श्री गोविंद योगी और गोविंद को गोविंद स्वरूप की स्थापना और उसके द्वारा साधन तत्व के अनुशासन देवता के प्रति साधक को जैसे उन्होंने लगाया वह श्री गुरु प्रभात की सदा सदा पूरी वृंदावन उपासना में अग्निवन और ताजा अग्निवन की उपासना है, वह उपासना है वह सदा सदा को प्रतिनिधि रहेगा स्मरणीय रहेगा। शिव वृंदावन का सदा वृंदावन की उपासना पद्धति का दूसरा उपासना तत्व है श्रीमद भागवत का खाना आपको आगे रखते श्रीमद भागवत के पूर्णतम सिद्धांतों को जैसे उन्होंने प्रकट किया श्री रामलीला के सिद्धांत को श्री अपने तीनों नाटकों के माध्यम से ललित मानव भगवान और रामचंद्र गोमी के द्वारा और फिर लीला स्तरों के जिस तरह से उन्होंने प्रकट किया, श्री वंदना में सब मन के अंतर्गत श्री गोविंद वृंदावली के अंतर्गत जैसे श्री गोविंद की वृंदावली गाते हुए जो श्रीमद भागवत के तत्व और श्रीमद भागवत का जो प्रसंग है उसके सिद्धांत को मुझे प्रकट किया वह अत्याचार पूर्व है। श्री श्रीमद भागवत के उस तत्व को श्रीमद भागवत का जो वर्गीया तत्व है उस वर्गीया तत्व को वर्गीया पूरी मात्रा पद्धति के मूल सिद्धांत को जब श्री रूप गोस्वामी महाराज अपने सत्य मानव नारक में प्रकट नहीं करते तो कौन जान सकता था कि नाथुर कृष्णा मोहिना प्रथम आया मन मानो भाषोपान स्वामी नारायण कृष्णा के बाद कौन जान जब साथ बिल्कुल नहीं है एक दिशा निर्देश करके अपनी वाणी को प्रस्तुत करना है। श्री वृंदावन की वार्ता का तीसरा जो वाक्य तत्व है वह है सजातीय क्षेत्र वाले सजातीय वैष्णव का संग और जितने भी वैष्णव आए उन सब के संरक्षण का दायित्व जब किसी ने लिया तो सनातन और उनके बाद में श्री जी को स्वागत उनके संरक्षण का दायित्व स्वीकार किया। तो वैष्णव सेवा जो कि साधन नहीं है जो कि साध्य है वह वैष्णव सेवा उन्होंने साध्य कैसे हो सकती है इस बात को दिखाया और सजातीय श्री रंगनाथ गोस्वामी के बाद में कभी दिखाकर कभी विचार करते हुए कभी श्री सनातन गोस्वामी के साथ में विचार करते हुए उस लीला का जो कुछ भी चिंतन कर रहे थे श्री प्रिया जी की बहनी कैसे सरस्वती के समान लहराती है श्री श्री राम गोस्वामी ने यदि खीर खाई तो उनको अपना कैसे हुआ इन सारी बातों का विचार करते हुए सजातीय वैष्णव के साथ में जैसे विचार कर रहे हैं और उनको जैसे आगे प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं भजन को जैसे सुपुष्ट कर रहे हैं क्योंकि जिनको भी भेजा श्री महाप्रभु ने उनको रूप समाज के बात नहीं किया उनके आश्रम नहीं और नाम संकीर्तनम और श्रीमद भगवान की स्थिति श्री वृक्ष को प्रकट करने में वृक्ष के तत्व को प्रकट करने में जैसा श्री रूप सनातन का यहां के वीरा स्थल के हर स्थल उन सबों को प्रकट करने में श्री रूप सनातन का योगदान रहा है वह योगदान आपको सैद्धांतिक विवेचन में आपके सामने सिंधु और उज्ज्वल निर्मणि का कोई तुलना नहीं रखी बात बहुत कही जा रही थी पर इतना सारा शास्त्रों का पहाड़ था कि उसे संकलित करना और उसे क्रमबद्ध करके उसमें पूरा संबंध स्थापित करना यह संयोजन का काम होगा माना श्री रूपमय बाद में जो उसकी बात है कोई नई नहीं है वह शास्त्रों के द्वारा प्रस्तावित है कोई नई बात थोड़ी नहीं जा रही जो शास्त्रों में प्रस्तावित किया गया है उसी बात को वे प्रस्तुत कर रहे हैं परंतु वह इतना क्रांत विक्रांत और खंडित था कि उसको एक सूत्र में भाग लेना यह बहुत बड़ी बात थी और इतना बड़ा बड़ा सिद्धांत का पहाड़ था कि उसको एक क्रम से सजो देना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान था। श्री रूपसर पाठ ने सारे विवेचन को करते हुए जिस सूक्ष्मता के साथ में निर्दोष रूप में जो परिभाषाएं वे परिभाषाएं अपूर्व है भक्ति की परिभाषा प्रेम की परिभाषा भाव की परिभाषा ये सारी सारी परिभाषाएं अपने आप में अपूर्व है। सम्यक मुद्रक स्मान रहा मुख्यमाख्या क्षमता रहा भाव एवं शांत आत्मा उन्हें प्रेमा भी करते थे इस प्रकार प्रेम की परिभाषा कहीं भाव की परिभाषा जितने जितने परिभाषाएं देते हैं और वे परिभाषाएं जैसे अव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव इन सारे दोषों से रहित होकर के जितनी सार्थक होकर के विराजमान है जो परिभाषाएं अपने आप में एक मानदंड है उनको देख करके आश्चर्य होता है। तो ज्ञान के क्षेत्र में उपासना के क्षेत्र में श्री वृंदावन के संरक्षण के क्षेत्र में वैष्णव के संरक्षण के क्षेत्र में शास्त्र विवेचन के क्षेत्र में श्री रूपमय भाग का जितना अवदान है वह अवदान अपूर्ण है और वह अवदान श्री महाप्रभु के श्री रूप गोस्वामी के चरणाश्रित होने पर जहां हमको सारे शास्त्रों के सिद्धांत को जान सकने का सौभाग्य प्राप्त होगा वहां पर श्री गौर लीला का भी अनुसंधान प्राप्त करने का सौभाग्य जब राष्ट्र की लीला का आस्वादन किया जाए तो केवल प्रिया कृष्ण की लीला ही रह जाएगी, केवल जिसमें हानि रह जाएगी। परंतु जब गौर लीला जब श्री रूप गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाए तो श्री रूप के आश्रय ग्रहण करने पर, रूपाश्रित भक्ति करने पर गौर भक्ति, श्री गोविंद भक्ति और श्री हरि भक्ति, ये तीनों तीनों भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। गौर भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति और श्री हरि भक्ति, ये तीनों तीनों भक्ति जो है वह श्री रूप गोस्वामी के आश्रय के द्वारा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इसलिए काहे को कोई अलग ग्राहक ग्रहण करेगा, कोई भूल को तो नहीं पकड़े, इस भूल को पकड़ने से तीनों भक्तों की एकता प्राप्ति हो जाएगी। रूप के चरणाश्रय पाने ग्रहण करने पर, रूपांतर जनों का आश्रय ग्रहण करने पर श्री गौर भक्ति, गुरु भक्ति, गौर भक्ति और कृष्ण भक्ति, ये तीनों स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगे। अतः श्री रूप अंगद जनों के श्री चरणारविंद में जो यहां पर विराज होते हैं उन सब रूप अंगद वैष्णवजनों के श्री चरणारविंद में
उनकी अपनी अनुभूति रखते हैं, दूसरों को देते हैं। एक रूप स्वामी है जो रूप मंजरी है वो नहीं दे सकी, स्वरूप दामोदर जी ललिता है, रायमानंद जी विशाखन है, वो लोग जिस रस को नहीं दे सके उन लोगों ने भी रूप गोस्वामी के माध्यम से उनके अंदर में पुष्टि करा करके दिया। इसलिए रूप गोस्वामी जी समर्थ हुए जो चैतन्य महाप्रभु नहीं प्रकट कर सके, विशेष करके भारतीय भावता की स्थापना ये सहज बात नहीं। महापुरुष जी ने इसके लिए कुछ नहीं किया, सब रूप गोस्वामी के ऊपर निर्भर किया, सब दामोदर ने उनकी के ऊपर, राय रामानंद ने, सनातन गोस्वामी एक एक से हैं, रूप गोस्वामी के दूर सनातन गोस्वामी है, किंतु रूप गोस्वामी भी सब सनातन गोस्वामी भी उनकी कैसी सुंदर बंदरा था। इसलिए रूप गोस्वामी यदि नहीं आते तो कृष्ण का सारा परिकल्प खराब हो जाता है। महाप्रभु के परिकल्प ही स्वरूप दामोदर राय रामानंदा रहते, किंतु न जाने क्यों रूप गोस्वामी के सिर पर भी इस महिमा का सेहरा बना पर न था, इसलिए उनके माध्यम से जो बने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं रस सिंधु का एक छोटी सी कण आपको बता रहा हूं, उसको समझे इनके हृदय में मैंने स्फूर्ति दी। आप तो सभी लोग श्री स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत सभी मित्र इसके ऊपर जो हमारे मन की अभिलाषा को पूर्ण करें, इसीलिए श्री चैतन्य मनोमिष्टम स्थापितम जीवन चले। नरोत्तम ठाकुर जी ने बहुत सोच विचार किया दूसरे के लिए नहीं, इसलिए इन्होंने एक दिशा से दर्शन इन्होंने की, जैसा कृष्ण का परिकर मौन है, महाप्रभु के भी परिकर कर शरीर मौन, किंतु जो मुखर है रूप गोस्वामी के रूप में सारी क्रियाओं का सार रस तत्व क्या है, प्रेम तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, श्रीमती पृथ्वी कृष्ण तत्व क्या है, इन चारों का जो कि महाप्रभु जी और राय रामानंद के संवाद का सबका जीवन सूत्र के रूप में बड़ी सुंदर से, इसलिए हमारा सारा समाज भी नहीं केवल भव्य वैष्णव समाज नहीं, जितने भी भक्ति के संप्रदाय हैं यहां तक कि मैं देखता हूं उनको देखा था विद्वान जी का नाम के कर्पात्री जी का, अखंडानंद जी का, वो भी उनका दुश्मन लेकर के कुछ देते थे, उनके भी साहित्य में और उनके ज्ञान में कुछ नहीं कहा, जब भी उनको कुछ कहना होता भक्ति रस पर तो रूप गोस्वामी के विचारों को लेकर के, कभी कर्ण रूप गोस्वामी के विचारों को लेकर के उनका दुश्मन लेकर के और उनका नाम नहीं करते और इसलिए रूप गोस्वामी का योगदान जिन्होंने वर्णन किया सब कुछ बहुत सुंदर रूप से दर्ज किया है, जो कि हम लोग भी नहीं जानते थे इन्होंने ये सब चीज का भी दर्शन कराया। अब समय भी कम है तभी आप लोग बैठे रहेंगे, सात बजे तक समाप्ति जाता है, सात हो गया तभी एक घंटा और आप लोग चुपचाप बैठ रहे हैं और श्रवण कीजिए। अभी देखिए कैसे कैसे सुंदर रस प्रवाहित होंगे। अभी हमारे लक्ष्मी नारायण जी
कृष्णवस्ताय सर्वस्ताय नमो नम आदाम पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बुज स्याद् जन्मनि जन्मनि सर्वप्रथम अल्पज्ञरूपार्थकों में अंत कोटि दंडवत करा दे गया प्रचंडता तदनंतर मंत्री पुण्य महानुभाव सभा सत्य सबको असत्य असत्य प्रणाम दे उपस्थित पूज्य वैष्णव जनों से जनों एवं माताएं बहनों सबसे अर्चना आज हम लोगों का विशेष सौभाग्य अवसर है कि आज युवक महोत्सव के शुभ अवसर में जो आज एक महानुभाव गौरीय वैष्णव जनों के एकमात्र आश्रय पूज्य स्थल जिसकी चरण की प्रार्थना सहनी इस प्रकार श्री महाप्रभु जी से महाप्रभु जी के अंतरंग प्रिय परिकर जिनके मनोनिष्ठ विचार ऐसे श्री गुरु गोसाई पाठ जी आज तेरे भाव देती है। हम अलग क्या कहें हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर जी ने जिनके लिए यह वर्णन किया है श्री रूप गोस्वामी पाठी पात्र मसूली हम लोगों का जीवन का एकमात्र अभिलाषा का विषय। जितने भी वैष्णव आचार्य हुए लोग के संप्रदाय वे सभी लोग श्री रूप गोस्वामी प्रभुवर की पात्र मसूली की प्रार्थना है उनके विचार में भक्ति में आदर्श में स्नान हो करके उनकी वंदना की है कि निरंतर उसमें ही डूबते जाए जीवन का सार एकमात्र आश्रय श्री रूप गोस्वामी पाद श्री सनातन गोस्वामी पाद ने भी अपने बड़े भ्राता और गुरु के रूप में होते हुए भी श्री रूप जी के अभिव्यक्त को स्वीकार करते हुए रूपांतरित्व को दिखाया और वही रूपानुगत जो कि परंपरा धारा में आज भी चला रहा है जो जितना महाप्रभु जी की करुणा में स्नान होना चाहे जब तक श्री रूप गोस्वामी पाद के पास में मंत्री में अवसित हो उनके विचारधारा में स्नान नहीं हो महाप्रभु जी की करुणा को नहीं समझ सके और ना ही महाप्रभु रस को कभी कोई प्राप्त कर सके। ऐसे बहुत से समुदाय भी है राधा कृष्ण की उपासना करते परंतु वे दूसरे रूप से जो कि सही भाव से उपासना करते श्री रूप गोस्वामी पाद ने मध्य भाव के द्वारा रस साधना का विषय वर्णन किया रस चमत्कारिता का अनुभव कराया और किसी ने नहीं किया अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया है महानुभवों के विचारों में जो अभी व्यक्त हुआ है श्री रूप गोस्वामी पाद के विचार वैशिष्ट में रसधारा का जो वर्णन हुआ है भक्त तत्व का जिस प्रकार निर्भर हुआ है और किसी भी शास्त्रों में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है भरतनाट्यम आदि जितने भी रस काव्य ग्रंथ है उनमें नौ रसों का वर्णन आता है परंतु श्री रूप गोस्वामी पाद ने बारह रसों का वर्णन किया जिसमें पांच मुख्य रस और सात गौण रस को दर्शाते हुए बारह रसों के विषय भगवान श्री कृष्ण को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार शास्त्र ग्रंथों में पुराणों में रस के विषय में जो अति सूत्र रूप में केवल दिग्दर्शन मात्र किया है उसी को वर्णन करते हुए राधा कृष्ण की लीलाओं को संगठित किया है। श्री रूप गोस्वामी पाद के विचारों में दो क्षेत्र विचार कर इस प्रकार की स्थिति को वर्णन करते हुए दिखाए जिसमें सारे दो प्रकार के होते हैं कि वैदिक विधि भक्त के वैदिक भक्त के और राजमयी भक्त के जो भाव साधन और एक केवल विधि के साधन दो प्रकार के साधन इस प्रकार सिद्ध की भूमिका में प्रेम स्नेह मान प्रणय राज अनुराग भाव महाभाव की चरम दशा पर दिखाए साधक साधना करके उस भूमिका में पहुंचे शब्द तो अलग अलग करके क्षेत्र बांटा परंतु आज कोई ऐसे विचारक भी देखने को मिलते हैं और ऐसी स्थिति भी बनी है जहां सिद्ध की भूमिका सिद्ध भूमिका तो साधन पर जाने का परंतु श्रीमाय ने भक्ति रखा में सिंधु में क्रमानुसार वर्णन करते हुए भक्ति के पर्याय को दिखाया एक साधक स्थिति में साधक भक्ति भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति साधक के जीवन में बहुत सी बाधाएं आती अनर्थ घिरे हुए हैं उन अनर्थों को पार करते हुए साधक भजन करते हुए अवसर सभी होते भावावस्था में जा करके किंचित अनर्थ रह जाता है अपराध का कोई कोई भाग अवशेष रह जाता है इसलिए भाव साधक कहा गया है भाव भक्ति का पर्याय दिखाए और प्रेमावस्था में जा करके नैतिघ्न अनुपालता संपद रूप से नैतिघ्न दूर हो जाता है और कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता को प्राप्त होता है को दिखाते हुए पढ़िया का भय छोटो भर ने चार चार प्रकार के लक्षणों को वायरस किया। मेरा चित्र लोगों ने चार लक्षणों को वायरस किया जिसमें
ऐसा कोई इंसान जिनका हृदय गर्भ में हो गया और काम उसके
साथ में ही प्रभावित होंगे। यदि आराम के लड़के होंगे तो ठीक ऐसे आएंगे, आराम के इसमें कोई शंका नहीं। रामचंद्र की निंदा आप देखेंगे सड़क उसमें ये बालक कौन कितने सुंदर रूप से काम कर रहे हैं, सारे सिद्धांत कविता में वो भी कंठ से कर रहे हैं, ये है लक्ष्मण जी का बाहर जाओ उससे। सबसे पहले सोने के स्थान में स्वर्ण अलंकार वस्त्र और अस्तरियां इसे और पूछो ये तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। लक्ष्मण जी है उन्होंने सबसे पहले पूछा तुम्हारा परिचय क्या है, स्वर्ण माता पिता जी का नाम उन्होंने कहा लव हम लोग समझ रहे हैं कि आप बड़े विद्वान आदमी महाराज के छोटे भैया हैं, समस्त शास्त्रों में आप निपुण हैं, सिर्फ आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारा माता पिता क्या है कौन, ये तो शास्त्र के दृष्टि का पूछ रहे हैं। ब्रह्मचारियों का माता पिता का नाम उनके पूर्वाश्रम का यदि परिचय नहीं होगा, यदि कोई क्या पूछना हो हमारे गुरु की बात नहीं है, मैं देखा हमारे दूसरा दूसरी बात जब वो असत्या कहने लगे तुम्हें इससे क्या जरूरत है, हम गुरु जी के आश्रम में रहते हैं, के लिए आम अमरूद के पेड़ हैं, पहनने के लिए बर्तन है, पानी पीने के लिए गोदी का पानी है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, ये आपके ही यहां रहेगी के लिए बात है। वैष्णव का खून का माता पिता का परिचय आज तो एक नई चीज चली है शो पीएचडी करेंगे तो शो क्या शोध करेंगे, शोध करेंगे ये लोटा नोबल प्रियर का है, लोटे का शोध हो किसी के जूते का शोध हो किसी के बंद परिवार का शोध हो, वैष्णव का परिचय के नहीं, माता पिता का हमारे यहां बहुत कम प्यार के कहीं लिखा नहीं अपना पिता, हमारा अपना परिचय माता पिता गुरु को गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने अपना कहीं नहीं परिचय दिया, गुरु उनके महापुरुष गुरु गोस्वामी जी हमारे चैतन्य महापुरुष के नित्य परिचय रूपमंजरी के रूप में उनके नित्य परिचय में रहा था, उनका यही लौकिक उनका कोई परिचय लोग आएंगे ब्राह्मण थे उनके माता जी कौन थे पिता कौन थे ये सब, इसलिए वैष्णव ने सबसे पहले का परिचय यदि देना भी है लौकिक भी तो गुरु का परिचय और नहीं रूप गोस्वामी का परिचय है वो श्रीमती राधिका जी की अत्यंत प्रिय थी नृत घर की वो मंजरी सही मंजरी सत्ता सेवा किला असंकोचिता भूमिका ललिता विशाखा में जो संकोच है असंकोच नहीं है राधा कृष्ण की सेवा में वो नियंत्रित सेवा में नहीं जा सकती, रूप गोस्वामी के लिए रूप मंजरी के लिए वो विलास पर एक पलंग पर सोए रहने पर भी वहां पर जा सकते हैं, ऐसी रूप मंजरी जी ने इनके संबंध में संक्षेप में हमारे आचार्य ने बताया सभी लोगों ने किसी ने पंच का परिचय इत्यादि ने दे केवल एक आदमी थोड़ा सा नहीं जानने की वजह से ऐसा गोस्वामी जी का अत्यंत अपराध उनका वर्ष उनके ग्रंथों को देख करके हम लोग नहीं कर सकते विचार, जिस प्रकार से रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी का प्रकाश किया जिस प्रकार हमारे जी गोस्वामी ने और रघुनाथ दास गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को प्रकट किया पश्चिम आशीष जी के द्वारा उनको ज्ञान अन्यथा अपने बुद्धि विवेक से उनको नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारे गोस्वामी में जी गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के बाद में रूपानी हुए हमारे कृष्णदास व्यास गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्रीलक भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी और अंत में हमारे श्री प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सती गोस्वामी था। इन लोगों के माध्यम से हम लोगों का कुछ कुछ परिचय था। अन्नदान नहीं, जब तक इन लोगों की कृपा नहीं होगी हम रूप गोस्वामी को नहीं समझ सकते। जैसे प्रकार से बिना रूप गोस्वामी की कृपा से महाप्रभु को हम नहीं समझ सकते, प्रेम तत्व को नहीं समझते, रस तत्व को नहीं समझते, राधा तत्व को नहीं समझते। जब तक ये रूप गोस्वामी कृपा नहीं करेंगे अपने परिक्रमों के माध्यम से, तब तक हम रूप गोस्वामी के विचारों को, उनके जीवन चरित्र को, उनके समझ में कुछ नहीं होगा। इसलिए हम उनको स्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनके परिकरों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जो कृपा करके अनुग्रह करके हमको ऐसे जता भी बुद्धि योग हम कई एक माम बयान देते, उनकी कृपा से भी हम लोग उनके समझ में जान सकते हैं। कब हमारे पौर के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, हालांकि आप लोग आज की भांति कल की पढ़ाइए और इस विषय में और अधिक इसको सुन करके रूप गोस्वामी का अनुगमन किया। रूपानु में और राधानु में कुछ अंतर, सभी रूपानु जरूर राधानु है किंतु सभी राधानु रूपानु नहीं है। इस चीज को इस तरह से हम कल इसके संबंध में और कुछ बतलाएंगे। आज यहीं तक हम लोग अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। इसके बाद में आरती होगी, आप लोग एक महामंत्र
बन गया महाराज।